الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. میرے دینی مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور علماء کرام، آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، بڑی خوشیوں والا دن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو خوشی کے لیے دو دن عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دنوں کے اندر خوشی مناؤ، کھاؤ پیو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے ہمیں حکم دیا، مگر ہر چیز کے پیچھے، ہر کام کے پیچھے کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں. خصوصاً اسلام کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے. ہر چیز کے لیے عید الفطر بنائی جاتی ہے، اس میں خوشی کیوں کی جاتی ہے؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم دیا، جب لوگوں نے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوئے اور لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کیا تو عید الفطر کا دن عطا فرمایا. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کا بھی ایک پس منظر ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قربانی کرنے کا حکم کیوں دیا اور صاحب استطاعت پر قربانی کو واجب کیوں فرمایا، اس کا بھی ایک پس منظر ہے. بس اسی پس منظر کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایسی ہستی ہے کہ اس دنیا کے تمام مذاہب کے اندر ان کو ایک عظمت دی جاتی ہے، ان کو ایک وقار حاصل ہے. چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو اور ہم مسلمان بھی، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست کہا جاتا ہے. میرے بھائیو، اتنا بڑا لقب، اتنا بڑا نام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سی قربانیوں اور بہت سے امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ملا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک کو شروع سے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کی کچھ جھلکیں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے وہ معاشرہ کیسا تھا. معاشرے کو چھوڑیے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا گھرانہ کیسا تھا، ان کا گھر کیسا تھا، ان کے گھریلو ماحول کیسا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر کے اندر ان کے والد، ان کا کام تھا بت بنانے کا، بت بنانے کا. और दूसरा काम था पंडित का, यानी जो बुत खाना था उसकी निगरानी करना, ये उनके वालिद का हाल था। ऐसे घर के अंदर अल्लाह ताला ने उनको मबऊस फरमाया और माहौल ऐसा था कि हुकूमती तौर पर सारे के सारे लोग बुत परस्त थे। पूरा शहर, पूरा कंट्री, पूरा देश बुत परस्ती के अंदर लगा हुआ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मबऊस हुए, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इब्राहीम अब एक अल्लाह की दावत देना है। इसने ख़तरनाक माहौल के अंदर अपने घर से शुरुआत की, अपने वालिद को समझाया कि मेरे अब्बा जान, जो ये आप बुत बनाते हैं, पत्थरों को अपने ही हाथों से काट कर तराश कर आप बुत बनाते हैं और फिर इन्हीं को सामने रख कर इन्हीं से अपनी हाजतें, ज़रूरतें और तकलीफ़ों के अंदर आसानी मांगते हैं, ये कहाँ की बात है। आपने देखा कि इस बुत के ऊपर मक्खी बैठी, वो अपनी मक्खी नहीं भगा सकता। इसके सामने जो आपने खाना रखा, ये उसको अगर कुत्ता लेकर भागे तो उसको नहीं रोक सकता, ये खुद आजिज है, तो तुम्हारी ज़रूरतों को कहाँ से पूरा करेगा। इसको समझाया, लेकिन उनके दिमाग के अंदर वो रच बस गया था, बुत परस्ती घर कर गई थी कि बस हमने ये तरीका देखा है तो इसी पर चलना है। ये नई बात कि एक अल्लाह को मानना, ये हमारे लिए बहुत नई चीज़ है। उन्होंने इनकार किया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर से बाहर निकले, माशरे को देखा, हुकूमत को देखा, सारे के सारे लोग बुत परस्ती के अंदर पड़े हुए। वहाँ पर इतने ख़तरनाक माहौल के अंदर बादशाह के सामने जाकर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह की दावत दी। लेकिन नतीजा ये होता है कि जब जालिम ताकतवर होता है तो वो हक़ को दबाने की कोशिश करता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। और यही किया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक आग जलाकर उसके अंदर उनको फेंकने की पूरी साजिश कर दी गई। इससे हमें क्या पता चलता है कि माहौल चाहे कितना भी ख़तरनाक हो, चाहे माहौल और हालात हम पर कितने भी ख़तरनाक आ जाए, हमें एक अल्लाह को नहीं छोड़ना है। हमारे ईमान का सौदा किसी भी हाल के अंदर हमें नहीं करना है। आज दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें अपना पूरा जोर लगाकर, अपना पूरा दम लगाकर मुसलमानों से उनके इस्लाम को छीनने की कोशिश कर रहा है। जगह जगह पर उनको अगर खाने के फाके हैं तो उनको खाना दिया जा रहा है, अगर उनको मेडिकल की ज़रूरत है तो उनको मेडिकल दी जा रही है, सारी सहूलतें फ्री में दी जा रही है। मांग रहा है बातिल हमसे कि हमारा ईमान दे दो, तुम्हारा ईमान दे दो। मेरे भाइयों, ऐसे हालात के अंदर हमें अपने ईमान को बचाना है और जिस जगह पर बातिल ये काम कर रहा है वहाँ पर जाकर अपने मुसलमान भाइयों के ईमान की हिफाजत करनी। अल्लाह ताला ने हमें दिया है तो कुछ हम सर्फ करेंगे, उनका ईमान बच जाएगा। ये हमें पहला सबक इनसे मिलता है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी जगह से, उनकी कौम ने उनके शहर से निकाल दिया, साथ में उनकी बीवी थी, वहाँ से निकाला। वो गए दूसरी जगह पर, रास्ते के अंदर भी बहुत ख़तरनाक हालात आए। बाद में आगे चल कर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र दराज होती गई, लोगों को इस्लाम की दावत देते गए। एक मौका आया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बुढ़ापे को पहुंच गए, लेकिन घर के अंदर कोई औलाद नहीं थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 90 साल की उम्र के अंदर अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला इस दुनियावी सहारे के लिए, इस दुनियावी सहारे के लिए मुझे किसी नाइब की ज़रूरत है, यानी मुझे बेटा चाहिए जो इस दुनिया के अंदर मेरा सहारा बने, ज़ाहिरी सहारा मेरा बने। अल्लाह तबारक व ताला ने दुआ को कबूल फरमाया और 90 साल की उम्र के अंदर अल्लाह ताला ने एक होनहार बेटा अता फरमाया, जिसको हम इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। जब बेटा पैदा हुआ, अभी माँ की गोद में है कि अल्लाह ताला ने अपने खलील को आजमाया कि इब्राहिम, ये जो तुम्हारा नन्ना सा बेटा है और ये जो तुम्हारी महबूब औरत है, बीवी है, इसको वादिये ज़ीज़रा के अंदर जाके छोड़ाओ। कुरान कहता है कि वादिये ज़ीज़रा के अंदर जाके छोड़ना है। किसको कहते हैं? ऐसी चटियल ज़मीन को कि जो ज़मीन न घास उगाने की ताकत रखती है और जिस ज़मीन के इर्द गिर्द पानी भी ना हो, ऐसी वादी और ऐसे जंगल के अंदर जाकर के छोड़ना है। अल्लाह ताला का हुक्म है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरा करना है। निकल गए पूरी हिम्मत के साथ अपने बीवी बच्चों को लेकर के। फरिश्ते ने रास्ता बताया और बैतुल मक़दिस से चल कर के मक्कतुल मुकर्रमा में जाकर के उनको छोड़ा। वहाँ पर जाकर जब बच्चे और बीवी को छोड़ दिया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब मुड़ कर के जा रहे हैं। बीवी ने सवाल किया कि ए मेरे सर के ताज, हमें इस जगह पर छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। जब तीसरी मर्तबा पुकारा कि अल्लाह के हमें क्यों छोड़कर जा रहे हो, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। अब उस माँ को देखिए कि जिसकी गोद के अंदर नन्ना सा बेटा है और बड़ी तमन्नाओं और बड़ी दुआओं के बाद मिला है, उसको एक ऐसे चटियल मैदान के अंदर छोड़ दिया गया है जहाँ पर थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी खजूरों के अलावा कुछ नहीं है। सोचो उस माँ की ममता के ऊपर क्या गुजरा हो, क्या हाल हुआ होगा। लेकिन जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से ये सुना कि अल्लाह ताला का हुक्म है, तो उस माँ का जवाब सुनिए कि उस माँ ने कहा कि जब मेरे अल्लाह का हुक्म है तो मेरा अल्लाह हमें कभी बर्बाद नहीं होने देगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, यही माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, इन्हीं की गोद में इंसान नूर के साँचे में ढलता था। कि जब माँ ऐसी थी कि जिसका तवक्कुल और उसका यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पर इतना ज़बरदस्त था, तो फिर उसकी गोद के अंदर इस्माइल जैसा बेटा ही हो सकता है। मेरे भाइयों, माएँ, हमारी औरतें हमारे बच्चों की तरबियत के लिए बहुत अहम रास्ता है। जैसी माएँ होंगी ऐसे बच्चे होंगे। उनका ईमान जितना मजबूत होगा, हमारे बच्चों के अंदर ईमान इतना मजबूत होगा। आज की जालिम ताकतों ने, हमारे इस्लामी दुश्मनों ने हमारी माँ को कमज़ोर किया है, उनके ईमान को कमज़ोर किया है, ताकि उनको किसी खालिद बिन वलीद से लड़ना ना पड़े। तारीख में आता है कि जब हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्ह ने इन यहूदियों के ऊपर बड़ा सख्त हमला किया, इनको सख्त हराया और इनकी नाक के अंदर दम कर दिया, तब किसी यहूदी ने कहा था कि ए खालिद, हम तुम्हारी औरतों को इस कदर हम कमज़ोर कर देंगे कि वो बाद के अंदर कोई खालिद बिन वलीद पैदा ही नहीं कर सकती, इतना कमज़ोर कर देंगे। इसलिए इन माओं के अंदर, हमारी औरतों के अंदर ईमान की मजबूती और उनके अंदर इस्लामी तालीमात का होना बहुत अहम और ज़रूरी है। इसके बाद जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए अल्लाह ताला ने एक और इम्तिहान ले लिया कि इब्राहिम ख्वाब में दिखाया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। जब ख्वाब दो तीन मर्तबा आया तो समझ गए कि अल्लाह ताला का हुक्म है, मुझे ये करना है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तेरे गले के ऊपर छुरी चला रहा हूँ और नबी का ख्वाब ये सच्चा होता है, मुझे लगता है कि मुझे इसका हुक्म दिया जा रहा है। अब वो बेटा देखिए, इस्माईल अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए, बिल्कुल नौजवानी के कम उम्र है, 9-10 साल की उम्र है, लेकिन ईमान इतना मजबूत है कि अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर दिया। कहा या अबतिफ अल मादा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन, के मेरे वालिद, आप कर गुजरिए उस काम को जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है, कर गुजरिए, इंशाअल्लाह मैं सब्र करने वालों में से हूँ। अल्लाह ताला का हुक्म है कि कुर्बान करना है तो कुर्बान कर दो मुझे। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने घर से लिया, माँ को कहा कि इस्माईल को घुमाने लेकर के जा रहे हैं, वहाँ से लेकर के चले मक्कतुल मुकर्रमा, काबा के करीब घर था, वहाँ से लेकर के चले मीना की तरफ और वहाँ पर जाकर अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर लिटाया और पूरी कोशिश के साथ और पूरी तैयारी के साथ उनको ज़बह करने की प्लानिंग कर ली। जब पहली मर्तबा छुरी चलाई तो उनका चेहरा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आमने सामने था। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा, मेरा चेहरा आपके चेहरे के सामने है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ थोड़ा सा खून देखकर आपके हाथ कांप जाए और हुक्म खुदा टूट जाए, इसलिए मुझे उल्टा लिटाओ कि मेरा चेहरा आपको नज़र ही ना आए और आप छुरी चला दो और हुक्म पूरा हो जाए। कहा ठीक है बेटा, उल्टा लिटाया और अपने बेटे की हरकतें ना हो उसके लिए अपने बेटे के, अपने लख्त जिगर के हाथ पांव को बांधे। आज हम बकरों के बांधते हैं, बहुत आसान लगता है, कभी अपने बेटे के बांध कर देखें, कितना मुश्किल काम है, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? एक अल्लाह के हुक्म के लिए कि अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, बस करना है। मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया और हुक्म खुदा को पूरा करने के लिए छुरी चलाई, लेकिन छुरी चलने के लिए, काटने के लिए अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। हर चीज़ अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। छुरी चली, छुरी चल ही नहीं सकी, अल्लाह ताला ने आनन फानन जन्नत से एक डुम्बा भेज करके हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी को उसके गर्दन पर चला दिया। जब आँख खोली तो देखा कि बेटा तो ज़िंदा है, खड़ा हुआ हंस रहा है और उसकी जगह पर जानवर ज़बह हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम, आप अपने काम के अंदर कामयाब हो गए, अपने इम्तिहान के अंदर पास हो गए, आपको जो करना था वह आप कर गुज़रे, आप कामयाब हैं। इससे हमें क्या सबक मिलता है? ये नहीं कि हमें सिर्फ जानवरों की कुर्बानी देनी है, उनके गले पर छुरी चलाकर खून बहाना है, ये इसका मकसद नहीं है। मकसद ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर अपनी हर शय को कुर्बान करना है, अपनी हर शय को कुर्बान करना है। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि हमें ये करना है, और हमारा दिल नहीं चाहता, उसके बावजूद भी हमें वो काम करना है। ये इसका मकसद है। जानवरों को लाया जाए और जानवरों की पास पोल कर उनको उनको कुछ दिन उनका कुछ वक्त दिया जाए तो उनकी मोहब्बत आपके दिल में आती है। जो लोगों को आपने देखा होगा कि जो जानवर पालते हैं, अगर उनसे कहो कि अपने जानवर के ऊपर छुरी चलाओ, नहीं चला सकते, उनके हाथ कांप जाते हैं, नहीं चला सकते, इसलिए कि उनके दिल के अंदर उसकी मोहब्बत है। तो अल्लाह ताला के हुक्म के लिए, अल्लाह की इबादत, अल्लाह ताला की इताअत के लिए जिस काम का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दे दिया उसको करना है, और जिससे अल्लाह ताला ने हमें रोक दिया उसको किसी भी हालत के अंदर हमें नहीं करना है। ये इसका मकसद और ये ईद उल अज़हा का पैगाम है। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को, हमारी कुर्बानियों को कबूल फ़रमाएँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।